ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमाश्लोके भक्तेर्भवति नैष्टिकी। ज्ञानविरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामैहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता श्रीशाकान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेशगोपिकान्तराधाकान्त नमोऽस्तुते। तत्कांचनगौरङ्गिता देवी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीपाद मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस है और श्रीपाद रामानुजाचार्य का कल तिरुभाव दिवस है। तो रमाई प्रभुपाद ने कहा कि कल एकादशी भी है और गुरुवार भी है, तो कल का भी क्लास आज ही लीजिए और आज का जो भागवतम के जगह पे श्रीपाद मध्वाचार्य के लीलाएं और श्रीपाद रामानुजाचार्य की लीलाएं के ऊपर चर्चा हम थोड़ा सा करेंगे। वैसे तो उनके बारे में चर्चा एक घंटे में नहीं हो सकता है, लेकिन जितना प्रावोत जो मुख्य बातें हैं उनकी जीवनी में उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप सबको मालूम है कि चार संप्रदाय हैं, ब्रह्म रुद्र श्री कुमार। ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रवर्तक है इस कलयुग में वो है श्रीपाद मध्वाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है श्रीपाद रामानुजाचार्य और रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय के निम्बारक आचार्य। ये चार आचार्य और चार संप्रदाय, चार सिद्धांत। श्रीपाद मध्वाचार्य का जो सिद्धांत है ब्रह्म संप्रदाय का द्वैत सिद्धांत है और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, निम्बारकाचार्य का द्वैताद्वैत और विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैत। तो याद रख लेना चाहिए, चार आचार्य, चार संप्रदाय, चार सिद्धांत। तो आज दो आचार्य के बारे में चर्चा करेंगे, पहले आप मध्वाचार्य के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीपाद मध्वाचार्य के बारे में चर्चा करने से पहले ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, उनका जो नाम है माधवा, माधवाचार्य नहीं मध्वाचार्य है। तो लोग इनका नाम उच्चारण करते हैं MADHVA मध्वा, MA माधवानी, MADA माधवा, मध्वाचार्य, मधु से माधवाचार्य बना, इसलिए उनका नाम है मध्वाचार्य। माधवाचार्य, माधवाचार्य कोई और हो जाएंगे समझिए। तो मध्वाचार्य कौन है, उनका परिचय क्या है? उनका परिचय ज्यादा विस्तृत में करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मालूम है आप सबको कि मध्वाचार्य है हनुमान जी, वही हनुमान जी द्वापर युग त्रेता युग में रामचंद्र का सेवा किया, वही हनुमान जी आए द्वापर युग में भीम के रूप में आके कृष्ण का सेवा किया, वही हनुमान और भीम कलयुग में मध्वाचार्य के रूप में प्रकट हुए और व्यास का सेवा किया, व्यासदेव का सेवा किया। तो वायु के अवतार है, जैसे वायु पुत्र पवन पुत्र कहते हैं हनुमान, तो पवन पुत्र हनुमान है, वही पवन पुत्र भीम है और वही पवन पुत्र है मध्वाचार्य। तो पवन पुत्र का अर्थ क्या है, कौन से पवन है? हम सोचते हैं कि भौतिक जगत का जो वायु है उसके अवतार है, नहीं, वैकुंठ के जो वायु है उसके अंश अवतार है। ये तीनों, ये नहीं सोचना चाहिए कि मध्वाचार्य जो है ये भौतिक जगत की वायु है, नहीं, वैकुंठ के वायु होने के नाते उनको मुख्य प्राण कहा जाता है, उनका और एक नाम है मुख्य प्राण। मध्य संप्रदाय में हनुमान जी को मुख्य प्राण कह के संबोधित करते हैं, मुख्य प्राण देव, अर्थ है जो हमारा जो प्राण वायु है, ये प्राण वायु का अधिष्ठान देव कौन है, मुख्य प्राण। हमारे जो शरीर चलायमान हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर प्राण वायु है, प्राण है। और जैसे हम कहते हैं कि जिसका मृत्यु होता है तो हम क्या कहते हैं, आत्मा चला गया करके बोलते हैं, प्राण चला गया बोलते हैं। तो आत्मा जा रहा है तो कहां जा रहा है, इसलिए प्राण चला गया। तो ये जो प्राण है उसका अधिष्ठान देव है मुख्य प्राण, जो वैकुंठ के वायु है, भगवान के बहुत निकटतम भक्त है। तो वैसे श्रीपाद मध्वाचार्य का आज तिरुभाव दिवस है, उनका प्राकृति भी अद्भुत है और तिरुभाव भी अद्भुत है। तो श्रीपाद मध्वाचार्य का विशेषता, मध्य संप्रदाय के अनुसार जब तक आप मध्वाचार्य या भीम को, हनुमान को सेवा नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, आप भगवान की धाम में नहीं जा सकते हो। जैसे हम कल शाम को नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि नित्यानंद प्रभु हमारे आदि गुरु है, नित्यानंद प्रभु का सेवा किए बिना, उनका कृपा के बिना हम चैतन्य महाप्रभु कैसे प्राप्त नहीं कर सकते। वैसे मध्य संप्रदाय के शिक्षा के अनुसार आप जब तक हनुमान मध्वाचार्य का सेवा नहीं करेंगे, भीम का सेवा नहीं करेंगे, तब तक आप भगवान की धाम में नहीं जा सकते हो। आप बोलो भीम का क्या सेवा करेंगे हम लोग, भीम को क्या पूजा करेंगे? भीम जो है वो आदि गुरु है मध्य संप्रदाय में, ही इज द मूल, आदि गुरु। जितने भी गुरु हैं मध्य संप्रदाय में वो सब भीम सेन के प्रतिनिधि है, वायु के प्रतिनिधि है, मुख्य प्राण के प्रतिनिधि है। तो उनके संप्रदाय के अनुसार जैसे गुरु के बिना भगवान प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार मध्वाचार्य की सेवा के बिना, मध्वाचार्य या भीम या वायु मुख्य प्राण के सेवा के बिना, उनकी कृपा के बिना भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तारामद्र संप्रदाय का सिद्धांत को सार रूप में प्रस्तुत किया जाए, खाली एक शब्द में बोल सकते, एक लाइन में, विष्णु सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम। विष्णु जो है सभी में से उत्तम है, सारे जीव जितने भी जो भी दिखाई पड़ता सबसे उत्तम है कौन, विष्णु। वायु कौन है, जीवोत्तम। सारे जीवों में, सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान के कौन है, वायु। तो भागवत में कहा गया है कि सबसे श्रेष्ठ वैष्णव कौन है, शिव जी है। वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी ये सबसे वे श्रेष्ठ है तो वायु कैसे श्रेष्ठ हो गए? मैंने एक बार उनके आचार्य से प्रश्न पूछा था, मध्य संप्रदाय के पुत्री मठ के आचार्य से, ने कहा शिव जी तो श्रेष्ठ है प्रसिद्धि के रूप में, प्रसिद्ध भक्त है, जहां भक्तों की प्रसिद्धि का बात आता है सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव जी है, क्योंकि बहुत लोग उनको मानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। लेकिन वायु सर्वश्रेष्ठ भक्त है, क्यों? क्योंकि शिवजी ऐसा हुआ इतिहास में वो मोहित हो गए, मोहिनी को देख के मोहित हो गए, भगवान से युद्ध किए, ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन ऐसा प्रसंग कभी नहीं आया है कि शास्त्रों में कि वायु कभी मोहित हुए हैं। इसका अर्थ कौन श्रेष्ठ है? वायु श्रेष्ठ, कि मध्य संप्रदाय के आचार्य का कहना है। तो वैसे श्रीपाद मध्वाचार्य, उनका विशेषता विशेष स्थान, एक वादिराज तीर्थ करके एक महान आचार्य है मध्य संप्रदाय के लाइन में। वादिराज तीर्थ कोई और नहीं है, जो ब्राह्मण रुक्मिणी के जो द्वारा लिखा गया एक लेटर है, लेख है, उसको भगवान तक जो पहुंचाने के पहुंचाए, वही ब्राह्मण आए थे अवतार लिए वादिराज तीर्थ के रूप में। तो वादिराज तीर्थ एक बहुत सुंदर गीत को लिखते हैं, पालयाच्युत पालया आदित पालया कमलालया पायला पालया धृत भूधरा मृहोदरा स्वजनोदरा मध्वमानस पद्मभानु समम मध्वमानस पद्मभानुसम। श्रीमद् मध्वाचार्य के मन जो है वो कमल के बराबर है, तो उडुपी कृष्ण है वो सूर्य के बराबर है, सूर्य उदय होते ही तुरंत कमल खिल जाता है, वैसे ही श्रीपाद मध्वाचार्य का मन खिल जाता है भगवान उडुपी कृष्ण का दर्शन करके। रौप्य पीठ कृतमालयम हरिमालयम, रौप्य पीठ, उडुपी क्षेत्र को रौप्य पीठ या रजत क्षेत्र कहा जाता है। भगवान द्वारका छोड़ के उडुपी में आए, उसके बारे में आपको सुंदर स्टोरी मालूम है, पहले स्टोरी बताऊं। एक बार श्रीपाद मध्वाचार्य आनंद विभोर होते हुए वो जा रहे थे मल पे समुन्द्र में स्नान करने के लिए, अचानक से एकदम तूफान आया। वो तूफान में एक नाव आ रहा था, वो नाव नाविक जो सोचा कि बस अब मरने वाले भी, इतना भयानक सा तूफान अचानक से आ गया। तब दूर से देखा कि एक साधु है, संत है, सन्यासी है, तो उनके मन में ऐसा है कि अगर कोई बचा सकता है तो भगवान भी नहीं बचा सकते, केवल यही संत बचा सकते हैं। उन्हें ऐसे जोर से प्रार्थना किया, बहुत दूर था नाव, मध्वाचार्य ने उस नाव को डूबते हुए देखे, अपना जो अंग वस्त्र निकाले, निकाल के ऐसे ऐसे हिलाने लगे, तो स्वयं वायु है, तो सारे वायु को नियंत्रण मिलाए, तब वो नाव बच गया। वो नाव दरिया पे आया, नाविक नीचे उतरे, उन्होंने कहा, उसका जहाज के कैप्टन ने कहा कि आप की वजह से हमारा जीवन बच गया, आपको क्या चाहिए बताइए। मध्वाचार्य ने कहा कि आप कहां से आ रहे हो? ने कहा हम द्वारका से आ रहे हैं। अगर द्वारका से आ रहे हो तो आपके पास गोपी चंदन है? तो हमारे पास बहुत भरपूर गोपी चंदन है, क्योंकि जहाज में अभी तो आजकल की जहाजों में तो वाटर ब्लास्ट होता है, जब जहाज खाली होता है वो उसके अंदर थोड़ा सा भरना पड़ता है, क्योंकि कुछ हद तक डूबा रहना चाहिए जहाज पानी के अंदर, नहीं तो पलट जाता है। तो अभी तो पानी से ब्लास्टिंग होता है, पानी से भर के जाते हैं, नहीं पहले जमाने में वाटर ब्लास्टिंग है, स्टोन ब्लास्टिंग होता था, ब्लास्ट स्टोन बड़े बड़े पत्थर रखते थे, मान लो जहाज खाली है उसके अंदर कुछ तो भर के जाना चाहिए, तभी तो जहाज थोड़ा बहुत डूबेगा, नहीं तो गिर जाएगा। मैंने कहा हमारे पास बहुत पत्थर है, जितना चाहे उतना लेके जाइए। मध्वाचार्य ने कहा मुझे वो दो पत्थर चाहिए। तो नायक ने कहा बुलाया सब अपने अपने बहुत हट्टे कट्टे जितने भी जो उनका नाव चलाने वाले होते हैं या नाविक होते हैं, मैंने कहा कि अभी इसको उठा के उनको दो। तो वो लोग उठा रहे थे, उठ ही नहीं पा रहा है। मध्वाचार्य हंसते हुए ने कहा आपसे नहीं होगा, मैं उठाऊंगा। मध्वाचार्य ने दोनों पत्थर को ऐसे उठाए ताकि एकदम आनंद विभोर होते हुए चलते चलते और गीतों को गाते गए और बहुत सुंदर भजन को गाते गए। जैसे थोड़ा सा आगे पहुंचे एक पत्थर नीचे गिर पड़ा और वो टूट गया, अंदर से एक बहुत सुंदर विग्रह प्रकट हुआ। और ये विग्रह था बलराम जी का विग्रह, मध्वाचार्य ने स्थापना किया। और आगे चलते पहुंचे मध्य सरोवर में, उधर उस पत्थर के साथ वो अंदर डूबे, अंदर नहाने के लिए गए, वो पानी के संपर्क की वजह से पत्थर जो गोपी तंजन डूब पिघल गया। पिघलते पिघलते उनके हाथ में उड़पी कृष्ण, कृष्ण का विग्रह प्रकट हुआ। तो ये कृष्ण का विग्रह का विशेषता क्या है कि मध्वाचार्य ने विग्रह का स्थापना किया और अभी तक वो सेवा चल रहा है उड़पी में, वही उड़पी कृष्ण का। तो ये विग्रह का विशेषता क्या है? विग्रह का विशेषता इस प्रकार है, जब भगवान कृष्ण द्वारका में लीलाएं कर रहे थे उस समय देवकी बार बार कृष्ण को परेशान कर रही थी। कृष्ण को बोलती थी, देखो तुम मेरे पुत्र हो, हर माँ का इच्छा रहता है बाल लीलाओं को आस्वादन करना, अरे मुझे तो वो सौभाग्य नहीं मिला बाल लीलाओं का आस्वादन कराने। अभी यशोदा मैंने उधर कृष्ण को बार बार परेशान कर रही थी, जब गोत्र आई, ओ कृष्ण देखो मेरा इच्छा रह गया, हर माँ का ऐसा इच्छा रहता है कि मैं आपका बच्चे का शादी कराऊं, वो सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो इसकी वजह से भगवान ने यशोदा मई को कहा, ठीक है अभी इस जन्म में आपको सौभाग्य नहीं मिलेगा, मैं बाद में प्रकट होता हूं, प्रकट होके आपको वो सौभाग्य प्राप्त होता है मुझे विवाह कराने की। तो उनको तिरुपति बालाजी का लीला करना पड़ा उसकी वजह से। अभी इधर कृष्ण ने कहा देवकी को, देखो मैं बच्चों में बहुत नटखट था, इतना नटखट था कि आप सहन नहीं कर पाओगे मेरी नटखटपंथी की। देवकी ने कहा, नहीं 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 ऐसा कैसे, मैं तो हर चीज सहन करता हूं, तू मेरे पुत्र हो, मुझे तो वो सुख जो है बच्चे का नटखटपंथी को देख के ये उन माँ को बहुत सुख मिलता है, वो सुख तो मुझे नहीं जानी। कृष्ण ने कहा, मैं बचपन में इतना नटखट था कि सब गोपियां परेशान हो गई, यशोदा में परेशान होगी, आप तो सहन नहीं कर सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं मैं तुम मेरे पुत्र हो, ऐसा हो मुझे सौभाग्य चाहिए। कृष्ण ने कहा, चलो मैं कौन था अभी परिचय देता हूं, नहीं मेरी नटखटपंथी लीला का परिचय देता हूं। तुरंत उनकी अंतरंगा शक्ति के द्वारा, योग माया शक्ति के द्वारा वो द्वारका जो वृंदावन परिणित हो गया। अभी बड़ा सा द्वारका का महल नहीं रहा, नंद महाराज का आंगन और गोपियां ग्वाल बाल सब है, गाय हैं, बछड़े हैं और मक्खन को मतने वाला मंथन सब है, लेकिन यशोदामय नहीं है, उधर देवकी है। अभी देवकी क्या कर रही है, मक्खन को मत रही है। वो सीन क्रिएट हो गया द्वारका में। और कृष्ण एकदम छोटे से बालक के रूप में, ग्वाल बाल के रूप में वो आए। आके क्या किया, देवकी तुम मेरी माँ हो ना, तुम देखना चाहती हो मैं कौन हूं। तुमने क्या किया, जाके उस मक्खन को मतने वाला जो है उसको, जो डंडा रहता है उसको निकाल लिया, रस्सी निकाला। और देवकी कृष्ण को बोल रही है, क्या कर रही हो तुम, मुझे मक्खन मतने दो। और कृष्ण ने क्या किया, और देवकी कैसा साड़ी खींचा, हाँ तुम मुझे मेरी बाल लीलाओं को देखना चाहती हो, चलो तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे पकड़ो। वो आगे आगे भागने लगे, देवकी पीछे पीछे भागने लगी। और भागते भागते कृष्ण ने कहा, हंसते हंसते कहा, तुम मुझे पकड़ना चाहती हो, यशोदा बनना चाहती हो, हाँ अभी चलो मुझे पकड़ो। इधर भाग भाग के देवकी थक गई और कृष्ण एक जगह जाके खड़े हो गए। उनके राइट हैंड में एक मंत्री थी और राइट लेफ्ट हैंड में रस्सी है, ऐसा पढ़ के हंसने लगे। और देवकी थकी, बोली बस अभी तुम्हारा नटखटपंथी समाप्त हो गया, अभी तुम वापस बन जाओ। तब उसी समय रुक्मिणी आई, रुक्मिणी ने ये रूप देखा, कृष्ण का ये बाल स्वरूप देखा, तुरंत कृष्ण को आलिंगन किया, आप कितने सुंदर हो, इसी रूप में ज्यादा सुंदर लगता है, इसी ऐसे ही रह जाओ। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं मैं द्वारका में हूं, अभी ऐसे रहूंगा तो ये डंडा पकड़ के, रस्सी पकड़ के, ये बालक के रूप में मोर पंख धारण करके ये द्वारका में ये रूप चलेगा नहीं। रुक्मिणी कहा, बस इतना प्यारे हो आप, ये जो रूप है वो आपका ये जो द्वारका वाला रूप से और सुंदर है, ऐसे ही रह जाओ। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है ये रूप का आप सेवा कर सकते हो। तो कृष्ण ने दो रूप प्रदान किया, एक उनका और बलराम जी का, और इसका रोज सेवा करते थे देवकी और रुक्मिणी। जैसे द्वारका का लीला समाप्त हो गया भगवान का, सारे दुवंश चले गए, ये दो विग्रह जो है वो गोपी चंदन में मिल गया। उधर छुपे रहे और वही कृष्ण मध्वाचार्य के हाथ में पहुंचे 5000 साल के बाद। तो ये कृष्ण का आगमन हुआ उडुपी में। तो श्रीपाद वाजिराज तीर्थ लिखते हैं कि उडुपी कृष्ण कृष्ण जो है द्वारका से उडुपी क्यों आए। अगर कोई आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हो तभी जाते हो जब इस जगह से श्रेष्ठ जगह है कि नहीं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण जब द्वारका छोड़ के कहीं जा रहे हैं, इसका अर्थ है उसे श्रेष्ठ जगह होना चाहिए। द्वारका से बढ़कर कौन सी जगह है? वृंदावन। इसलिए उडुपी को या उडुपी क्षेत्र को, उस जगह को दक्षिण वृंदावन कहा जाता है। जिसमें सह्याद्री पर्वत है, सह्याद्री रेंज जो नासिक के दक्षिण भाग से शुरू होता है, सीधा जाता है कन्याकुमारी तक। ये जो पर्वत की जो ये पर्वत का रेंजेस है, इन पर्वतों को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है, जो परशुराम ने सृष्टि किया था और उसको दक्षिण वृंदावन कहा गया है। और भगवान ना उडुपी पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि उडुपी जो है वो दक्षिण वृंदावन है। द्वारका जो है ऐश्वर्य वाली लीलाएं हो रही है, लेकिन उडुपी में माधुरी लीलाएं हो रही है, मधुर लीलाएं हो रही है, वात्सल्य की लीलाएं हो रही है। तो भगवान द्वारका छोड़ के पहुंचे उडुपी। दूसरा कारण क्या है? द्वारका में तो 16,108 रानियां हैं। ये सब रानियां कृष्ण की एकदम बहुत सेवा कर रही है। इतनी सेवा कर रही है, इतना परफेक्टली सेवा कर रही है, कृष्ण को क्या क्या नहीं खिला रही है। बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन खिला रही है। दक्षिण भारत में क्या मिलता है? चावल रसम मिलता है। भगवान ऐश्वर्य की सेवाओं को, सारे सेवाओं को छोड़ के क्यों आए? किसकी सेवा ग्रहण करने के लिए आए? एक सन्यासी की सेवा ग्रहण करने के लिए आए। मध्वाचार्य जो है वो सन्यासी है। तो सन्यासी क्या अर्पण कर सकता है बड़ा भगवान को? कुछ नहीं अर्पण कर सकता है। कैन नॉट ऑफर मच। उडुपी में जाएंगे कृष्ण को, जैसे बच्चे को क्या अच्छा लगता है? कुछ गुड़ अच्छा लगता है, कुछ कुरमुरा जैसा अच्छा लगता है, वही चीज अच्छा लगता है, वही चीज उधर अर्पण होता है। और द्वारका में क्या क्या चीजें, बड़े बड़े 56 भोग उनका अर्पण हो रहा है। लेकिन भगवान ने सोचा कि ये 56 भोग का क्या फायदा? एक शुद्ध सन्यासी का हाथ से कुछ गुड़ और ये कुरमुरा जैसी चीजें हैं, वही चीजें मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, वही काफी है। क्योंकि ये भक्ति भाव से सन्यासी विरक्त व्यक्ति से मैं सेवा स्वीकार कर दूंगा। ये भाव से कृष्ण द्वारका छोड़ के आए उडुपी। मध्वाचार्य के सेवा को स्वीकार करने के लिए, सन्यासी सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान द्वारका की पटरानियों की सेवा को छोड़ के इधर आए। इसलिए हरिमालयम कृतमालयम, श्रीपाद वाजिराज तीर्थ कहते हैं कि रौप्य पीठ कृतमालयम, भगवान ने इस उडुपी क्षेत्र को उन्होंने अपना आलय, अपना घर बनाया। ये श्रीपाद मध्वाचार्य की विशेषता है। तो पहला विशेषता यह है कि मुख्य प्राण है। दूसरा विशेषता यह है कि भगवान 16,108 प्राणियों की सेवा को छोड़ के मध्वाचार्य की सेवा को स्वीकार करने के लिए कोड भी पहुंचे। मध्व संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय बहुत क्षीण हो गया था। ब्रह्मा जी बहुत चिंतित है, क्या करे क्या करे, मेरा संप्रदाय बहुत क्षीण हो गया है और आचार्य है मेरी संप्रदाय में, लेकिन उतना उनके पास विद्वत्ता नहीं है, उनके पास उतना सामर्थ्य और शक्ति नहीं है, खास करके मायावाद सिद्धांत को, मायावाद सन्यासियों को सामना करने की। ऐसा हालत था कि ब्रह्म समुदाय के सन्यासियों का कि वो सब पहाड़ों के नीचे छुपे हुए थे, शहर से बाहर थे, क्योंकि हर जगह ये मायावाद सिद्धांत का प्रचार चल रहा था। अगर कोई वैष्णव है, वैष्णव सन्यासी है, तो उनको मायावादियों को परास्त करने का शक्ति नहीं था। छुप छुप के अपने आप को मायावादी सन्यासी के रूप में निवास कर रहे थे और अंदर ही अंदर वैष्णवता की भावना को रखते थे। वैष्णव सिद्धांत, द्वैत सिद्धांत का प्रचार नहीं हो रहा था, जीवेश्वरवाद का सिद्धांत प्रचार चल रहा था। तब श्रीपाद मध्वाचार्य, तब ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और सारे देवता भी चिंतित हो गए, क्योंकि असुरी सिद्धांत है मायावाद सिद्धांत। तो सब लोग भगवान के पास पहुंचे, लोग प्रार्थना करने लगे कि आप कुछ करो। भगवान ने कहा मुझे मालूम है आप सब क्यों आए हो। तब तुरंत भगवान ने उनके प्रिय भक्त उनको बुलाए, मुख्य प्राण। मुख्य प्राण जैसे मैंने भी कहा वैकुंठ की वायु है, उनको बुलाए। तो जैसे वैकुंठ वायु आए, उनको प्रणाम किए, वैकुंठ भाई ने कहा, आपकी मन की इच्छा को मैं जानता हूं, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो यही मुख्य प्राण भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि आप जाओ, जाके खास करके ये मायावादी भाष्य का खंडन करो। तो यही मुख्य प्राण जब भीम के रूप में आए थे, एक असुर था, एक राक्षस था जिसका नाम था मणिमान। ये मणिमान नामक राक्षस भीम के साथ युद्ध किया था, भीम ने उनको मार के खत्म कर दिया था। वही मणिमान ने वापस जन्म लिया, तो सोचा कि मैं वापस क्या करूंगा, ये असुरी तत्व को फैलाऊंगा। तब यही मणिमान की जो शक्ति के द्वारा शंकराचार्य ने मायावाद भाष्य की रचना किया। हम लोग सोचते हैं कि शिवजी शंकराचार्य के रूप में आए, उन्होंने मायावाद भाष्य की रचना किया। शिवजी कभी मायावाद भाष्य की रचना कर सकते हैं? कोई नास्तिक सिद्धांत को प्रस्तुत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो शिवजी ने क्या किया, वो उनकी अंदर सारे शक्तियां हैं और उन शक्तियों में एक शक्ति है मणिमान का, राक्षस का शक्ति भी है। तो उन्होंने क्या किया, वो मणिमान राक्षस का शक्ति के द्वारा उन्होंने मायावाद भाष्य की रचना किया। कभी कभी आप मध्वाचार्य की कथनों में, उनकी राइटिंग्स में उन्हें कहते हैं कि वो धूर्त शंकर राष्ट्र शंकर, अस्तित्व में वो किसकी निंदा कर रहे हैं, वो निंदा कर रहे हैं मणिमान राक्षस का, जिसने भीम के रूप में जब आए थे वही मध्वाचार्य, वही राक्षस को मारे थे, वही राक्षस को पकड़ लिया। तब मुख्य प्राण को मालूम पड़ा यही मणिमान राक्षस का जो सिद्धांत है हर जगह फैला हुआ है और मैं उनको अभी खत्म करूंगा। तो कैसे खत्म करूंगा, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, ऐसा सिद्धांत है। ये जो कलम है वो तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है, तो तलवार से आप एक दो लोगों को काट सकते हो, लेकिन ये मणिमान राक्षस जो है सबके मन में घुस गया, सबकी चेतना में घुस गया है, अभी उसको कैसे मारे। तब श्रीपाल मध्वाचार्य या मुख्य प्राण ने सोचा, मैं ऐसा एक भाष्य का रचना करूंगा, ऐसा सिद्धांत का स्थापना करूंगा जो सबके मन में जो अज्ञान बैठा हुआ है, मैं ही भगवान हूं, उस अज्ञान को दूर कर दूं। तो श्रीपाद मध्वाचार्य का प्राकृति के पीछे मुख्य कारण क्या है, मायावाद सिद्धांत का खंडन। इसके बाद जितने वैष्णवाचार्य आए वो सब मायावाद भाष्य के खंडन की जब बात आती है तब श्रीपाद मध्वाचार्य के सिद्धांत को वो स्वीकार करते हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु मायावाद मध्वाचार्य के जो प्रमेय है, नव प्रेम प्रमेय को स्वीकार करके एक ग्रंथ का रचना करते हैं जिसका नाम है प्रमेय रत्नावली, और इस सिद्धांतों को अपने गोविंद भाष्य में रचना करते हैं और मायावाद भाष्य खंडन भी मध्वाचार्य के सिद्धांत के ऊपर आधारित करते हैं। मायावाद भाष्य का खंडन श्रीपाद मध्वाचार्य ने प्रत्येक ग्रंथ में किया है, खास करके उन्होंने एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है तत्व मुक्तावली। इसके अंदर एक एक मायावाद सिद्धांत को लेकर तोड़ दिया, उसके अंदर 100 या 115-115 श्लोक है, बहुत सुंदर है, जिसके अंदर मायावाद सिद्धांत को पूर्ण तरीके से खंडन किया है। जगह श्री प्रभुपाद जी अपनी चैतन्य चरितामृत की जगह तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो मायावादी सन्यासी हैं अपने आप को वेदांती मानते हैं और लोग उसको वेदांती मानते हैं, अपने आप को वेदांती कहते हैं, मैं वेदांती हूं, लेकिन वो विदंती है, वो वेदांती नहीं है। विदंती का अर्थ क्या है, जिसके पास कोई दांत नहीं है। क्यों दांत नहीं है, ये जो मायावादी सन्यासियों को रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने वो लात मार मार के उनको दांत को तोड़ दिए हैं और वो विदंती बन गए। और खास करके श्रीपाद मध्वाचार्य पहले रामानुजाचार्य ने मार के उनको दांत को ढीला किए थे और मध्वाचार्य ने उसको थोड़ा खत्म चूर्ण कर दिया, उस दांत को फिर उगेगा भी नहीं है। रामानुजाचार्य ने खाली ढीला किया था उनको, जैसे 2-3 मारने से ढीला हो जाता है ना। खुल्याम प्रभुपाद अपने ग्रंथ में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, मायावादी दार्शनिक जो है, सन्यासी जो है, वो दे हैव बिकम विदंती बिकॉज श्रीपाद मध्वाचार्य एंड रामानुजाचार्य हैज ब्रोकन देयर टीथ बाय देयर फिलॉसफी। तो मुख्यतः चैतन्य मध्वाचार्य का प्राकट्य हुआ मायावाद सिद्धांत का खंडन करने के लिए। तो मायावाद सिद्धांत क्या है उसका विशेष अभी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन श्रीपाद मध्वाचार्य का मुलाकात हुआ था चैतन्य महापुरुष से, जब श्रीपाद मध्वाचार्य पदरी से दूसरी बार लौट के जब आ रहे थे, उस समय पहली बार जब लौट के आ रहे थे तब पहली बार बदरी गए, दो बार बदरी गए मध्वाचार्य व्यासदेव से मिलने के लिए। पहली बार गए थे अपने मध्वाचार्य भाष्य गीता भाष्य को दिखाने के लिए। गीता भाष्य को जब पेश किए व्यासदेव को बद्री के सामने, बद्री विशाल के सामने, तो व्यासदेव ने कहा कि इसके अंदर कुछ गलती है। मध्वाचार्य देता दिखाया था, आप बताओ इसके अंदर कुछ गलतियां टूटियां हैं तो आप अपना टिप्पणी दीजिए। अगर पहले पेज में गलती है, क्या गलती है? तो मध्वाचार्य ने अपनी टीका में ऐसा लिखा था कि गीता जो है ज्ञान अनंत है और मैं एक शुद्र जीव हूं, मैं जितना हो सकता है उतना मैं जो समझा हूं, जो थोड़ा बहुत मैं समझा हूं उस चीज को मैंने रचना किया, लेश कहा, थोड़ा बहुत लेश मात्र मैं समझ पाया हूं उस बात को मैंने इस प्रस्तुत किया है लोगों के सामने। तब व्यास जी कहते हैं मध्वाचार्य को, मध्वाचार्य तुम पूर्ण प्रज्ञ हो, पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ, मध्वाचार्य के नाम है पूर्ण प्रज्ञ, आनंद तीर्थ, अनुमान तीर्थ, ये सब मध्वाचार्य का अनेकों अनेकों नाम है। जब जन्म हुआ तो मध्वाचार्य का उनका नाम था वासुदेव, दीक्षा होने के बाद उनका नाम पड़ा आनंद तीर्थ, और जब आचार्य बने उनका नाम पड़ा मध्वाचार्य, और अनुमान तीर्थ भी उनका एक नाम है और पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ भी उनका नाम है। तब व्यासदेव ने कहा आप पूर्ण प्रज्ञ हो, पूर्ण प्रज्ञ क्या अर्थ है, संपूर्ण जानते हो, आपको ऐसा लिखना चाहिए कि गीता जो है ज्ञान अनंत है, मैं सब कुछ जानता हूं लेकिन लोग समझ नहीं पाएंगे इसलिए मैं थोड़ा बहुत दे दिया है, अल्पतहा, ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। अल्पतहा का अर्थ क्या है, थोड़ा बहुत अल्प मैंने दे दिया, आप समझ लो क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे पूरा चीज। ये स्वयं व्यास देव श्रीपाद मध्वाचार्य की गीता की टीका के ऊपर उन्होंने ऐसे कमेंट दिया। तो जब उधर से आ रहे थे बद्री से, तो उन्होंने बिहार होते हुए, बनारस होते हुए, नवद्वीप होते हुए, उड़ीसा होते हुए, आंध्रा होते हुए वो कर्नाटक पहुंचे। जब मध्वाचार्य वैसे बनारस की पंडितों के साथ उन्होंने विवाद करके द्वैत सिद्धांत को स्थापना करके जब पहुंचे नवद्वीप में, नवद्वीप में उनका मुलाकात हुआ चैतन्य महाप्रभु से। अब वो चैतन्य महाप्रभु उस समय तो अब लीलाएं कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु तो 1486 में आए, मध्वाचार्य तो 1200 ईस्वी में है, चैतन्य महाप्रभु नित्य लीलाएं करते हैं नवद्वीप में। तो चैतन्य महाप्रभु की जो अप्रकट लीलाओं में मध्वाचार्य के साथ दो बार मुलाकात हुआ। तो पहली बार मुलाकात हुआ, श्रीपाद मध्वाचार्य चैतन्य महाप्रभु का इस रूप को देख के तुरंत भावविभोर हो गए और कहने लगे हे भगवान, मैं जब शास्त्रों को पढ़ता था मुझे ऐसा लग रहा था इस शास्त्रों में कोई गुप्त एक स्वरूप का वर्णन है, अभी वो स्वरूप मेरे सामने प्रकट हुआ, मैं भी जाके सारे जगत में बताऊंगा कि ये आप इस भगवान हो, आपका रूप का वर्णन करूंगा, माधुर रस का वर्णन करूंगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, उसके लिए समय अभी बाकी है, तो आप अभी थोड़ा बहुत रुको, मैं आके अपना स्वरूप को स्वयं प्रकाशित करूंगा और तब तक तुम दास्य रस का वर्णन करना, दास्य रस को भी प्रस्तुत करना, खास करके तुम मायावाद को खंडन करने वाला जो सिद्धांत है वो सिद्धांत की रचना करना, और ये द्वैत सिद्धांत को रचना करो, उसके ऊपर आप भाष्य को वेदांत की ओर भाष्य लिख के द्वैत सिद्धांत की स्थापना करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम्हारा ये जो कार्य है मायावाद खंडन, इससे ज्यादा इसके द्वारा मैं प्रभावित होके मैं जब प्रकट होऊंगा तो आपके संप्रदाय में दीक्षा लूंगा। चैतन्य महाप्रभु मध्य संप्रदाय में दीक्षा लिए। चैतन्य महाप्रभु के साथ हमारा कनेक्शन क्या है, मध्य संप्रदाय के साथ कनेक्शन ये है, मध्वाचार्य की लाइन में आप भगवद गीता खोलोगे, भगवद गीता का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के अंत में आपको ये प्राप्त होता है कि एंड में एवं परंपरा प्राप्तम, कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद ने व्यास को, व्यास के बाद कौन आते हैं, मध्वाचार्य। आप लिस्ट पढ़िए 32 आचार्यों का नाम है, उनमें से माधवेंद्रपुरी से पहले मध्वाचार्य से लेके वो सब आचार्य जो है वो मध्य संप्रदाय के आचार्य है। माधवेंद्रपुरी का जो दीक्षा है वो कनेक्शन था लक्ष्मीपति तीर्थ था, लक्ष्मीपति तीर्थ भगवान के इतने महान भक्त है, स्वयं बलराम जी उनके मन में प्रकट हुए और ने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं और वही मंत्र मुझे देना वापस, मैं आज आने वाला हूं। नित्यानंद प्रभु का दीक्षा भी उनसे हुआ था। कुछ तो हमारा कहना है कि नित्यानंद प्रभु का दीक्षा हुआ था माधवपुरी से, और कहीं कुछ लिखा हुआ लक्ष्मीपति तीर्थ से हुआ। लक्ष्मीपति तीर्थ ये मध्य संप्रदाय के साथ हमारा कनेक्शन लक्ष्मीपति तीर्थ। ऋषि चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य को कहा उन्होंने कि आप ये जो भाष्य का रचना करो जिसमें मायावाद का खंडन हो, और ये भाष्य की रचना करने की वजह से मैं भविष्य में आके आपकी संप्रदाय से दीक्षा लूंगा। और दूसरी बात, श्रीपाद मध्वाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया विग्रह को सत्य मान के सेवा करना। विग्रह को सत्य मान के सेवा करने का अर्थ क्या है? विग्रह को सत्य मान के सेवा करने का अर्थ है कि साक्षात्मी प्रतिमाने साक्षात राजेंद्र नंदन, आप एक पत्थर नहीं हो, आप केवल एक मूर्ति नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। इस बात की, इस भाव से विग्रह की सेवा करने को विग्रह सत्य माने, विग्रह को सत्य मान के चलना। ये दो बातों को चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य को दिया, मायावाद खंडन और दूसरा है विग्रह को सत्य मान के सेवा करनी। दो बातों के ऊपर आधारित होते हुए एक सिद्धांत की रचना करो, वही सिद्धांत का स्थापना करो। महाप्रभु का आदेश कि जब मैं आऊंगा तो यही दो सिद्धांत को लूंगा। चैतन्य महाप्रभु जब आए उन्हें ये चार वैष्णव संप्रदाय के चार आचार्यों के चार सिद्धांतों से दो दो बातें लिए। पहले उन्होंने वही दो बातों को इन चार आचार्यों को दिए, वापस उन्होंने लिया। ये सब भक्तों को मालूम होना चाहिए। ये जो चार संप्रदाय जो है हमारे गौड़ीय संप्रदाय के चार खंभ जैसे बराबर है। तो ये बात को सारे जगत को प्रस्तुत करने के लिए श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब उन्हें गौड़ीय मठ का निर्माण किया उधर नवद्वीप में, चैतन्य मठ का निर्माण किया, उसमें जब उन्होंने मंदिर बनाया चारों दिशाओं में चार आचार्य का विग्रह है और बीच में तारा गांधारी का गिरधारी का विग्रह है। यानी जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम का मंदिर है उसका नींव कौन है, उसका पिलर कौन है? तो पिलर है चार आचार्य। तो इसलिए चार आचार्य के चार सिद्धांत को जानना जरूरी है। जानेंगे तो गौड़ी विष्णु सिद्धांत को पिछले जान सकते हो। जैसे अगर नींव अच्छा बराबर है तो कन्फर्म गरीब अच्छा बराबर रहेगा। इसलिए मध्वाचार्य ने क्या किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये चार आचार्य को दो दो बातें दिए थे और वही दो दो बातों को वापस दे के उन्होंने गौड़ी वैष्णव सिद्धांत बनाया। मध्वाचार्य को दो बातें, मायावाद खंडन और दूसरा विग्रह को सत्य मान के सेवा करना, ही दो बातें। श्रीपाद रामानुजाचार्य के संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ने दो बातों को लिए, शुद्ध भक्ति कर्म ज्ञान रहित भक्ति ज्ञान कर्मादिनावृतम एक, दूसरा वैष्णव सेवा। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों से निम्बार्क आचार्य को श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो बातों को लिया, राधा कृष्ण सर्वोच्च विग्रह के रूप में, राधा कृष्ण की जो सेवा है वो सर्वोच्च है, और दूसरा है राधा रानी के पदचिन्हों में, गोपियों के पदचिन्हों में चलना। ये दो बातों को निम्बार्क आचार्य को दिए चैतन्य महाप्रभु और बाद में वही आके स्वीकार किए। और यही जो विश्व स्वामी संप्रदाय को श्री चैतन्य महाप्रभु ने दो बातों को दिया, राग भक्ति और संपूर्ण रूप में कृष्ण के ऊपर निर्भर करना। तो ये दो दो बातों को चार संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु लिए और गौड़ी वैष्णव सिद्धांत को स्थापना की। मूल रूप में चैतन्य महाप्रभु सारे ज्ञान का स्रोत है, उन्हीं ने सबको दिया था। तो मध्वाचार्य स्वीकार किए और नवद्वीप से निकलते हुए और आगे जा रहे थे बंगाल में, तब हर जगह बंगाल में शाक्त है। ये शाक्त जो है सब जगह वो क्या कर रहे हैं, वो बकरी को काट रहे, मांस काट रहे, खून पी रहे, दुर्गा को खून अर्पण कर रहे। मध्वाचार्य को ये देख के उनके हृदय में रहा नहीं गया, आप सबसे दयालु अवतार हो, आप इस जगह प्रकट होने वाले हो, इधर के लोग इतना क्यों क्रूर क्यों हैं? तब मध्वाचार्य की हृदय की भावना को समझते हुए चैतन्य महाप्रभु वापस प्रकट हुए ने कहा, मध्वाचार्य और एक सेवा करना मेरे लिए, ऐसे जो दीनहीन लोग हैं जो मांस खाने में कर्मकांड की बातों को स्वीकार करते हुए अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए मांस खा रहे और अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं, आप इन सब की जो हिंसा है उसको बंद कराना। तो मध्वाचार्य ने जो वापस जो उड़ भी गए, मैंने क्या किया, हर जगह सबको प्रेरित किया, आपकी जो द्वारा जो अर्पण किया जो मांस है कोई देवता स्वीकार नहीं करेंगे, आपकी देवताओं को भी पूजा करना है, इस प्रकार पूजा करो। क्योंकि देवता कौन है, वो कृष्ण के सेवक है, वो कृष्ण के निर्माली को स्वीकार करते हैं। तो मध्वाचार्य ने सबके साथ छल किया, आप दुर्गा का सेवा करना चाहते करो, पूजा करना करो, दुर्गा का पूजा करो, लेकिन दुर्गा कौन है? वो कृष्ण की भक्त है। इसलिए सबसे पहला आप सारा भोग, सारा सामग्री, सब कुछ शालिग्राम को अर्पण करो। शालिग्राम का जो महाप्रसाद है वो दुर्गा जी को अर्पण करो, गणेश को अर्पण करो, जिसको जो अर्पण करना करो। तो इसलिए आप दक्षिण भारत में खास करके उस एरिया में जाएंगे, भले वो गणेश जी का मंदिर हो, दुर्गा का मंदिर हो, कोई कार्तिकेय मंदिर हो, उस मंदिर में आपको तुलसी प्राप्त होगा महाप्रसाद के रूप में। तुलसी, दुर्गा का तुलसी के साथ क्या संबंध है? आप ध्यान से देखेंगे, उधर मध्य संप्रदाय के वैष्णव बैठे रहेंगे, वैष्णव मंत्रों के द्वारा सारे सेवा जो है वो शालिग्राम का हो रहा है, और शालिग्राम का महाप्रसाद जो है दुर्गा रूप अर्पण, दुर्गा के गले में तुलसी की माला होगी। क्यों? वो पहले तुलसी की माला शालिग्राम को अर्पण करके वो लोग सोचेंगे हम तो दुर्गा के भक्त है, लेकिन हस्तियों में क्या मिल रहा है उनको? विष्णु प्रसाद मिल रहा है। तो ये श्रीपाद मध्वाचार्य की विशेषता है। बाद उन्होंने कहा कि भले ही वेदों में कहा गया है कि ये कुछ कर्मकांड की शास्त्र में कहा गया है, अश्वमेध गोमेध इस प्रकार की चीजों को तमसिक देवताओं को अर्पण करना चाहिए, तमसिक विधि का वर्णन किया है, लेकिन कलयुग में ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि कलयुग में करने की शक्ति और सामर्थ्य उन ब्राह्मणों में नहीं है। तो उसके बदले में आप क्या करो? आपको खून अर्पण करना है, आप पानी में कुमकुम डालो और उसको अर्पण करो। इसलिए आप जब दशहरे के दिन में वो जितने भी वाहन वगैरह होते हैं उसके ऊपर ये कुमकुम का पानी चलाते हैं, अस्तित्व में पहले खून अर्पण करते थे, ये मध्वाचार्य की वजह से अभी भी वो विप्रता चल रहा है, वो सब अभी खून अर्पण करना सब बंद हो गया, कुछ लोग करते हैं, लेकिन पूरा समाज में इस प्रकार की बदलाव रहा है। श्रीपाद मध्वाचार्य ने, श्रीपाद मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस है, ऐसे उनकी लीलाओं को इतना लंबा, इतनी लीलाएं हैं, पूरा उसके ऊपर एक हफ्ता बोल सकते हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है सुमध्व विजय, नारायण पंडिताचार्य के द्वारा विरचित ये सुमध्व विजय नारायण पंडिताचार्य ने रचना किया। नारायण पंडिताचार्य जो है उनके पिताजी त्रिक्रम पंडिताचार्य है। त्रिक्रम पंडिताचार्य कासरगोड करके एक जगह है, उड़पी से और दक्षिण में केरल राज्य में पड़ता है, उधर उनका अभी भी वो घर है, मैं एक बार गया था उस घर में। तो उस घर में मध्वाचार्य रुके थे और त्रिक्रम पंडिताचार्य के साथ जब उनका वाद विवाद चल रहा था, नारायण पंडिताचार्य केवल 5 साल के बालक थे, और नारायण पंडिताचार्य मध्वाचार्य को देख के इतना मोहित हो गए। बाद में यही त्रिक्रम नारायण पंडिताचार्य बाद में संन्यास लेने के बाद उन्होंने रचना किया इनकी भाष्य। अस्तित्व ने मध्य संप्रदाय में ये जो सेवा है वो सन्यासी सेवा माना जाता है। उड़पी में जो विग्रह है, विग्रह का सेवा केवल सन्यासी कर सकते हैं, ओनली सन्यासी कैन डू द सेवा फॉर द विग्रह, क्योंकि ये कुमार संप्रदाय का, या कुमार संप्रदाय की बात नहीं करेंगे, सन्यास लाइन में अनेकों लाइन से, दत्तात्रेय का एक सन्यास लाइन है, कुमार चार कुमारों का सन्यास लाइन है, वैसे अनेकों सन्यास संप्रदाय चलते हैं। एक तो शिक्षा संप्रदाय है, दूसरा है सन्यास संप्रदाय है। तो ये चार कुमार जो है वो उनके द्वारा दिया गया मंत्र से ये मध्य संप्रदाय के सन्यासी वो सेवा करते हैं। तो ये सन्यासी पूजा है ये उड़पी में, देवर्षिप उड़पी में केवल सन्यासियों के द्वारा पूजा होता है। तो श्रीपाद मध्वाचार्य का अनेकों ऐसी लीलाएं हैं, किस प्रकार सन्यास दिए, किस प्रकार बाल लीलाएं किए, इतना उनका निष्ठा है, सन्यासी सन्यास की निष्ठा है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ गलती कर देता है तो तुरंत उनको बहुत सारा पश्चाताप करना पड़ता है। सन्यास संप्रदाय होने के नाते उनका सन्यास का जो स्ट्रिक्टनेस है बहुत ज्यादा है। वैसे उसी व्यक्ति को सन्यास मिलता है जो उनका जो नियम है सन्यास देने का, इस प्रकार है, जो माता पिता अपने बच्चे को सन्यासी बनाना चाहते हैं, अभी कितने माता पिता अपने बच्चों को सन्यासी बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी ऐसा पिता है, कुछ ऐसे परिवार है वो चाहते हैं कि मेरे बच्चा सन्यासी बने, तो तुरंत अपना नाम दर्ज करते हैं और उस नाम के साथ उस बच्चे का जन्म पत्र भी देना पड़ता है। तो उस जन्म पत्री को 3 ज्योतिषी को देते हैं और तीनों ज्योतिष सर्टिफिकेट करना चाहिए, हाँ इसके अंदर सन्यास योग है, तभी उसको सन्यास देते हैं। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट मिल गया तो संन्यास मिल गया तब उसको गुरुकुल में ज्वाइन करते हैं। तो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब उनका मध्य भाष्य को पूरा तरीके से उन्होंने जान लिया, वेदांत को पूरा जान लिया, संस्कृत में प्रवीण हो गए, तब उनको संन्यास देते हैं। अभी 8 साल 9 साल 11 साल में उनको संन्यास मिल जाता है। अभी एक स्वामी जी है वो पुतु के मठ के स्वामी जी, उनका भी उम्र है 45 साल के करीब होंगे और उनका संन्यास लेना था 8 साल की उम्र में, और जैसे 8 साल में वो संन्यास मिला तुरंत उनको उड़पी मठ का देखभाल करने की जिम्मेदारी मिला। ऐसे 8 मठों को स्थापना किए मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने सोचा कि बड़ा बड़ा मंदिर मठ ने बनाना है, छोटा बनाना है, जैसे उड़पी का मंदिर बहुत छोटा, एकदम बहुत बहुत सरल है, वेरी सिंपल। सोचेंगे अगर संन्यास इधर ही रह जाएंगे मंदिर में प्रचार कौन करेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, 8 सन्यासी को बनाए, 8 मठ बनाए, और ये 8 मठ के लोगों को 2-2 साल की मौका मिलेगी कृष्ण मठ को देखभाल करने, इसको पर्याय कहा जाता है। 2 साल में वो ये सेवा करके उडुपी कृष्ण, बाकी जो 14 साल है उनको भ्रमण करना होगा, प्रचार करना होगा। तो ये उधर का विशेषता है, ये सन्यासी सेवा है। तो ये 2 साल तक उनको देखभाल करने की जिम्मेदारी है, उसके बाद उनको प्रचार करना। श्रीपाद मध्वाचार्य ने ऐसा सिस्टम शुरू किया था, मध्वाचार्य ने 2-2 महीने का सिस्टम शुरू किया था, लेकिन बाद में वाजेरा तीर्थ ने उसको 2 साल का सिस्टम बनाया कि एक आचार्य आएंगे और ये 2 साल ये करेंगे। तो इतना स्ट्रिक्टनेस है कि सन्यासी में कि ये जो पुत्र के मठ के स्वामी जी 45 ईयर्स के हैं, मैंने कहा मेरा 3री बार अभी उडुपी मठ को देखभाल करने का मौका मिल रहा है। अभी 45 के उम्र में 3री बार का अर्थ क्या है, उनको 2 बार 28 साल 45 में 28 निकालेंगे कब कितना होता है 15 साल। जब उनको संन्यास मिला था ठीक 2 साल संन्यास के बाद, यानी उनके 9 या 10 साल के थे, उस समय उनको पूरा उडुपी मठ को संभालने का, कृष्ण मठ को संभालने का जिम्मेदारी मिला था। अब देखिए 8 साल का या 9 साल का बालक सन्यासी है, अभी क्या कर रहे हैं, पूरा मठ को देखभाल कर रहे हैं। कम से कम उस मठ में या उड़पी मठ में रोज 10,000 लोगों को फ्री में प्रसाद मिलता है, 10,000 की जब फेस्टिवल होता है 50,000 लोग, पर्याय होता है 2 लाख रोज, 4 दिन का फेस्टिवल होता है। अभी आजकल के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम पूरा 2 साल को चलाने का जिम्मेदारी है, कितना खर्चा है। अभी मान लीजिए कोई सन्यासी है उनका 9 साल का है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो उडुपी क्षेत्र को अन्न ब्रह्म कहा जाता है, जो अक्षय पात्र को भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को प्रदान किया था, वही अक्षय पात्र भीम यानी मध्वाचार्य ने इन 8 मठ के सन्यासी को प्रदान किए थे। मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति इधर आता है सब लोगों को प्रसाद ग्रहण करके जाना होगा, दोपहर को और रात को फुल खुला है, 10,000 पीपल एवरी डे प्रसाद मिलता है। और इस प्रसाद की महिमा तो हमारे ब्रह्मचारी जानते हैं। तो ब्रह्मचारी गए थे उडुपी, हमेशा कृपा सिंधु प्रभु कहते हैं कि तो जी उड़पी में चबाना नहीं पड़ता प्रसाद को, बस चलो डायरेक्टली चले जाता है। मेरा मंदिर की पूरी जैसा नहीं, चबाते चबाते जाओ। चावल है, रसम है, सांभर है और सब्जी है, उसको मुंह में डालो अंदर चले जाता है, कोई चीज कड़क नहीं, एकदम सरल, एकदम बहुत सात्विक। तो ये मध्य संप्रदाय मध्वाचार्य के। तो आज तिरुभाव दिवस से उन तिरुभाव के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मध्वाचार्य अभी उन्होंने सोचा कि मैंने तो अष्टमठों को स्थापना किया, व्यास मुष्टि व्यास देव ने मध्वाचार्य को 8 शालिग्राम शिला दिए थे, उन 8 शालिग्राम शिलाओं को 8 शिष्यों को प्रदान किया, उन्होंने कहा कि आप उसका सेवा पूजा करो, अभी मेरा समाप्त हो गया। मध्वाचार्य को जो प्रिय उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद, जो बचपन में स्कूल में जब वो गए थे टीचर के पास वो सिखा रहे थे, लेकिन उनको कोई क्लास में अटेंड नहीं किया, लेकिन फिर भी मध्वाचार्य ने बता दिया था ऐत्रेय उपनिषद, जिस उपनिषद को बहुत प्रिय मानते हैं, क्योंकि उस उपनिषद में द्वैत सिद्धांत को बहुत सुंदर उल्लेखन किया गया है। अवैतरीय उपनिषद के ऊपर व्याख्या करते हुए अवैतरीय उपनिषद को उच्चारण करते इतना सुंदर स्वर में अनंतेश्वर मंदिर में मध्वाचार्य बैठे हैं, सारे उड़पी के लोग उसकी उनकी प्रवचन सुन रहे, जय घोष होना लगा आकाश से, पुष्प वृष्टि होने लगी और पुष्प से पूरा मध्वाचार्य का शरीर जो है भरते भरते गया और पूरा शरीर पुष्पों के द्वारा भर गया। अचानक से ऐत्रेय उपनिषद का उच्चारण समाप्त बंद हो गया। सत्यतीर्थ उनके शिष्य तुरंत गए जाके थोड़ा सा फूलों को निकाले, उधर मध्वाचार्य नहीं, कोई नहीं है, खाली उनका अंगवस्त्र रहा। इस प्रकार श्रीपाद मध्वाचार्य वो अप्रकट हो गए, अनमैनिफेस्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड आज के दिन। तो जिस जगह मध्वाचार्य बैठ के ये प्रवचन दिए, कुछ समय के बाद एक आचार्य आए, उन्होंने सोचा कि इधर मध्वाचार्य का इधर से अप्रकट हुआ तो मैं इधर एक मध्वाचार्य का मूर्ति का स्थापना करूंगा, विग्रह की स्थापना करूंगा। ऐसा विचार किया तो उस दिन रात को मध्वाचार्य के सपने में आके कहे कि मेरे ऊपर पत्थर क्यों डाल रहे हो, मैं उधर नित्य निवास करता हूं, अभी भी उद्दीप चलता है उधर, जिस जगह मध्वाचार्य जहां का प्रकट हुए अनंतेश्वर मंदिर में वो जगह है। अब प्रकट हो गए कहां गए, उधर लिखा हुआ है उस जगह जहां मध्वाचार्य प्रकट हुए, अदृश्य रौप्य पीठे सदृश्य बदरी तटे, अदृश्य रौप्य पीठे, रौप्य पीठ जो है इधर से अदृश्य हो गए, अदृश्य हो गए कहां प्रकट हुए, वो सदृश्य बदरी तटे, बदरी तट में वो वापस वो प्रकट हुए। ये श्रीपाद मध्वाचार्य का अप्रकट के बारे में है। तो श्रीपाद मध्वाचार्य का अप्रकट होने के बाद उनके आठ मठ जो है इस उड़पी मंदिर को चलाते हैं और बाद में अनेकों अनेक वो महान महान आचार्य आए। एक उनके संप्रदाय के एक आचार्य है जिनका नाम है विजय ध्वज तीर्थ, उन्होंने भागवत के ऊपर टीका रचना किया, उसके पीछे बहुत सुंदर कहानी है। एक बार विजय तीर्थ उस समय उनकी खास उम्र था केवल 12 साल 12 ईयर्स, बाल संन्यास मध्य संप्रदाय में बाल संन्यास 8-12 साल के पहले ही संन्यास हो जाता है, यानी तब तक इतने प्रचंड विद्वान बन जाते हैं। केवल उस समय 12-14 साल का विजय तीर्थ, उस समय बहुत भूख लगता है, शास्त्र में वर्णन किया गया है सन्यासी को खुद का खाना पकाना नहीं चाहिए, ऐसा नियम है, अग्नि जलाना नहीं चाहिए, भिक्षा मांग के जीना चाहिए। तो 3 दिन से उनको कोई भिक्षा नहीं मिला, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने सोचा थोड़ा सा मैं इधर का कंदमूल को थोड़ा सा मैं पका के मैं खाऊं, वैसे पत्थर से आग निकालते ऐसा कर रहे थे विजय ध्वज तीर्थ। उसी रास्ते से और एक वृद्ध सन्यासी आ रहे थे, ये विजय ध्वज तीर्थ भारत सन्यासी तुरंत डांटने लगे, कैसे सन्यासी हो तुम सन्यासी ऊपर थोड़ा अपमान कलंक हो, तुम तुम्हारे संप्रदाय कलंक हो, तुम जाके तुरंत आत्महत्या कर लो, तुम अपने आप के लिए अग्नि जला के खुद को पेट भरने के लिए सन्यासियों को तोड़ रहे हो। तो सोचने लगे मैं क्या करूं अभी, तो उनके गुरु के पास गए, उन्होंने कहा कि अभी मैं आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि मैंने बड़ा अपराध कर दिया है, मैं अपने भूख को सहन नहीं कर पाया, मैंने उसको अग्नि चला के अपने लिए अपने इंद्रिय को सृष्ट करने के लिए मैं कुछ पकाने गया। तो उन गुरु ने कहा और एक प्राइस थे उसका, तो आप भागवत के ऊपर टीका लिखो। 14 साल का सन्यासी उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम के ऊपर उन्होंने पूरा टीका का रचना किया, वही विजय तीर्थ का टीका है। तो ये मध्य संप्रदाय हमारी मूल संप्रदाय है और ये चैतन्य महाप्रभु का ब्रांच है। मैंने खास करके आज लीलाओं के ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया, जहां मध्वाचार्य ने अद्भुत लीलाएं की हैं, उन्हें कहा कि मैं ऐतिहासिक उपनिषद का उच्चारण करता हूं, ये क्योंकि दो ऐसे पहलवान आए थे, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा किया है 50 लोग जो उठाने पर हम उठाएंगे, ऐसे सब बड़ा मस्ती कर रहे थे, मध्वाचार्य ऐसा है खेलो, आप मेरा गला दबाओ जितना चाहे उतना जोर से चलाओ, मेरा उच्चारण बंद करने के लिए प्रयास करो। दोनों ने आके पूरा गला दबाने का प्रयास किया, लेकिन उच्चारण इतना स्पष्ट है मध्वाचार्य का उतना ही जैसे कोई साधारण जैसे नॉर्मली होता है उसी प्रकार। मध्वाचार्य ने भीम की लीलाओं को सुनने में प्रकाशित किया। कहीं एक जगह रुके थे गोवा में, वो सत्संग समाप्त हुआ, उनके बाजू में घर वालों का किसी का विवाह था, तो विवाह तो बहुत सारा सामग्री वगैरह आता है, उनके घर में जगह नहीं था सामान रखने के लिए, ये घर में भी रखा हुआ था जिस घर में मध्वाचार्य एक में रुके थे। तो अगला दिन विवाह है तो बहुत सारे केले वगैरह मंगाए थे, 2000 केले। अगला दिन विवाह के समय सबको बांटना था, केला वगैरह देते दक्षिण भारत में। तो अगला दिन लाके देखते है केला कहाँ, एक भी केला नहीं है, खाली छिलका पड़ा हुआ है। और वो राज के लिए केला है, राज के जो केला होता है वो 1 फुट लंबा होता है और 4 इंच मोटा रहता है। वैसे 2000 केले खत्म, वैसे केले खाने की 2-3 लीलाएं वैसे बड़ा अद्भुत लीलाएं हैं। एक बार उनके गुरु के पुत्र को सरदर्द हो रहा था, मध्वाचार्य ने जाके उनके कान में ऊपर फूका, वो स्वयं वायु है, सरदर्द तो गुम हो गया लेकिन उनको पिछले 10 जन्मों की बातें याद आ गई तो उनका भी ऐसे भी लीला है। तो श्रीपाद मध्वाचार्य के सिद्धांत को सार रूप में प्रस्तुत करते वाजराज तीर्थ जो है 9 बातों को लिखते हैं, जिसको 9 प्रमेय कहा जाता है। विष्णु परतरम आम्य वेद्यम, ऐसा एक श्लोक है जिसके ऊपर भले विद्याभूषण प्रभु प्रमेय रत्नावली में इसकी व्याख्या करते हैं। तो ऐसे अनेकों अनेकों चीजें हैं, वो चोरों के साथ वो अभी चर्चा नहीं कर सकते, समय हो गया है। और समय प्राण प्रभु ने कहा कि आप इसके ऊपर भी लीजिए रामानुजाचार्य के, अभी वो तो समय नहीं है, तो कल प्रभुपाद का लेक्चर है ना, उसके बाद ले लेंगे रामानुजाचार्य के ऊपर। कल रामानुजाचार्य का भी दिवस है, प्रकट दिवस है या फिरोबा दिवस है, कल रामानुजाचार्य का चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीपाद मध्वाचार्य की जय, श्री प्रभुपाद की जय।